नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शूटर गुजरात के भुज से गिरफ्तार किए गए। मुंबई क्राइम ब्रांच को देर रात ये सफलता मिली। मुंबई पुलिस ने आशंका की पुष्टि करते हुए कहा कि संदिग्धों को गुजरात के भुज जिले में पकड़ा गया था। गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में अतिरिक्त विवरण का पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना के बाद मुंबई से भागे दो संदिग्धों को गुजरात के भुज शहर में गिरफ्तार कर लिया गया है और मंगलवार को आगे की पूछताछ के लिए उन्हें मुंबई वापस लाया जाएगा। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई। लॉरेंस बिश्रोई के भाई अनमोल बिश्रोई ने फेसबुक पोस्ट शेयर कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इसके बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस घटना के बाद जहां कुछ लोग परेशान हैं तो वहीं कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट तक बता दिया। अब इस बात पर अरबाज खान का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने लोगों को जवाब दिया है जो इस घटना पर बिना वजह कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के नाम पर जो भी बयान सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत एक कश्मीरी नागरिक की हिरासत को रद्द करते हुए सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि भारत पुलिस स्टेट नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक देश है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो कानून के शासन द्वारा शासित है, पुलिस और मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किए बिना उसे उठाकर पूछताछ नहीं कर सकते हैं। इस मामले पर दक्षिण कश्मीर के शोपियां के जफर अहमद ने पिछले साल PSA के तहत दर्ज किए गए मामले को लेकर अदालत में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। जस्टिस राहुल भारती ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि भारत पुलिसिया स्टेट नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है और बिना किसी आरोप और मामला दर्ज किए किसी को पूछताछ के लिए नहीं उठाया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह किसी को मनमाने ढंग से हिरासत में लेना नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है। कोर्ट ने पूछा कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं है तो उसे किस कानून के तहत उठाया गया और पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा, भारत में जो कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश है, पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ये कहना नहीं सुना जा सकता है कि किसी नागरिक को उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किए बिना पूछताछ के लिए उठाया गया था और कथित पूछताछ में याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में विदेशी निवेश का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। PM मोदी का कहना है कि दुनिया भर से आने वाले निवेशकों का स्वागत है, लेकिन जो प्रोडक्ट बने उसमें देश की मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए और भारत के नागरिकों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल करना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी भारत में निवेश करने की इच्छा रखता है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसका उत्पादन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। टेस्ला और स्टारलिंक की भारत में संभावित एंट्री से जुड़े सवाल के जवाब में PM ने कहा, मैं चाहता हूँ कि भारत में निवेश आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा किसने लगाया है, लेकिन काम में बहाया गया पसीना हमारे अपने लोगों का होना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 30वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के M. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 287 रन बनाए और यह IPL का सर्वोच्च स्कोर रहा। पहली पारी में एडन माक्रम ने 17 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाए, जबकि अब्दुल समद ने 10 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाए। दोनों के बीच 19 गेंद पर 56 रन की साझेदारी हुई। ट्रेविस हेड ने 41 गेंद पर 9 चौके और 8 छक्के की मदद से 102 रन बनाए। हेनरिक क्लासे ने 31 गेंद पर 2 चौके और 7 छक्के की मदद से 67 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद पर 34 रन बनाए। विराट कोहली ने इस मैच में 20 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली और मयंक ने उन्हें अपनी गेंद पर बोल्ड कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 7 रन बनाकर रन आउट हो गए, तो वहीं कप्तान डु प्लेसिस ने 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दिनेश कार्तिक 83 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच में RCB ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 262 रन बनाए और इस टीम को 25 रन से हार मिली। ये इस सीजन में RCB की 7वें मैच में छठी हार रही, तो वहीं हैदराबाद के 6ठे मैच में 4थी जीत रही। अब 8 अंक के साथ हैदराबाद 4थे नंबर पर है, जबकि 2 अंक के साथ RCB 10वें स्थान पर है। ट्रेविस हेड को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।